भूमिका भारतीय दर्शन के क्षेत्र में सांख्य का आस्तिक दर्शन के रूप में विशिष्ट स्थान है। वैदिक परंपरा मूलक सांख्य के सिद्धांतों की प्राचीनता असंदिग्ध है। दुख निवृत्ति के सर्वोपरि उपाय के रूप में सांख्य की शाश्वत उपादेयता एवं ग्राह्यता अक्षुण है। प्रस्तुत दर्शन के सूत्र, वृत्ति, कारिका तथा भाष्य, इन सभी विधाओं में सांख्य के सिद्धांत उपलब्ध होते हैं। इनमें सबसे प्राचीन विधा सूत्र शैली है। महर्षि कपिल ने वेद साहित्य से अन्वेषित सांख्य सिद्धांतों का सफल एकत्रीकरण कर सूत्रात्मक शैली में सांख्य दर्शन का निर्माण किया। सांख्य सूत्रों में निगूढ़ तत्वों का प्रस्फुटीकरण एक और जहां विज्ञान भिक्षुकृत सांख्य प्रवचन भाष्य में हुआ है, वहां दूसरी ओर ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका विषय बोध के लिए सुगम मार्ग है। आवश्यक सूचनाओं द्वारा सुबोध गम्य मार्ग को सुगमतम बनाने में माठर वृत्तिकार तथा गौड़पाद भाष्यकार ने भी सांख्य दर्शन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। सांख्य के सिद्धांत दुख संसार में कैवल्य तक की विवेचना से पूर्ण सांख्य में अनेक व्याख्येय सिद्धांत हैं, जैसे दुख पदार्थ तत्व प्रमाण गुण सृष्टि करण सर्ग शरीर तथा कैवल्य। इन सिद्धांतों पर एक विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक है। अविद्या से आविर्भूत दुख संसार का पर्याय है और विद्या प्रभव संसार की आत्यंतिक निवृत्ति सुख परम सुख है। सुख दुख की सहावस्थिति असंभव रहने से संसार काल में होने वाली सुखानुभूति सुखाभास समान है और परम सुख के समक्ष सुखाभास त्याज्य है, यह स्वाभाविक है। इस विश्वास के साथ महर्षि कपिल ने प्राणी मात्र के प्रति दुख नाश के उपाय का उद्घोष किया। सर्वसाधारण भी दुख के प्रति शत्रुवत व्यवहार कर सुख से मैत्री संबंध स्थापित करते प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। अतः जिज्ञासा होती है कि सर्व त्याज्य दुख का स्वरूप क्या है। दुख तीन प्रकार का है, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक। स्वशरीर एवं स्वमन के द्वारा आत्मा में होने वाला दुख, जिसे आंतर दुख भी कहते हैं, आध्यात्मिक कहलाता है। वात पित्त कफ की असंतुलित अवस्था जो ज्वर अतिसार आदि का कारण है से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। इच्छा पूर्ति के अभाव से जो चिंता व्याकुलता व्यग्रता आदि का कारण है उत्पन्न दुख, जैसे वर्षा वज्रपात उल्कापात आदि, आधिदैविक है। चार प्रकार के प्राणी वर्ग से उत्पन्न जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज दुख आधिभौतिक है। तीन प्रकार के दुखों के आत्यंतिक नाशार्थ लौकिक तथा कर्मकांड परक वैदिक मार्ग का असामर्थ्य प्रतिपादित कर सांख्य शास्त्रियों ने वैदिक सांख्य ज्ञान मार्ग को अनुसरणीय बताते हुए उसकी व्यावहारिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। जिज्ञासा होती है कि वह कौन सा सांख्यिक ज्ञान मार्ग है जिसमें दुख पर्याय संसार के आत्यंतिक नाश की क्षमता है। ज्ञान सदा सविषयक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सांख्य ज्ञान के विषय रूप में सांख्योक्त तत्व पदार्थ गृहित होते हैं। सांख्य सम्मत तत्वों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जड़ वर्ग तथा चेतन वर्ग। जड़ वर्ग में 24 तत्व तथा चेतन वर्ग में पुरुष तथा ईश्वर दो तत्व हैं। इन तत्वों में आधुनिक विद्वानों का संदेहास्पद तत्व एकमात्र ईश्वर है। सांख्यीय ईश्वर के लिए अस्ति नास्ति दोनों प्रकार की विचारधाराएं उपलब्ध होती हैं। अस्तु सांख्य कारिका के निर्माता ईश्वर कृष्ण सांख्योक्त तत्वों का विभाजन चार प्रकार, अविकृति मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति केवल विकृति तथा प्रकृति विकृति शून्य से करके तत्वों की एक सप्त षोडश तथा एक संख्या की क्रमशः संगति बैठाते हुए पंचविंशति तत्व समूह को ज्ञान मार्ग के विषय रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति समस्त जड़ कार्यों का कारण तथा स्वयं किसी का कार्य न होने से अविकृति अर्थात मूल प्रकृति है। महत अहंकार तथा पंच तन्मात्र उत्तरोत्तर तत्वों के कारण तथा पूर्व पूर्व तत्वों के कार्य होने से प्रकृति विकृति रूप है। एकादश इंद्रिय तथा पंच महाभूत क्रमशः अहंकार तथा पंच तन्मात्राओं के कार्य तथा स्वयं किसी के कारण तत्वांतर कारण न होने से केवल विकृति रूप हैं। चेतन पुरुष किसी का कारण न होने से और किसी का कार्य न होने से प्रकृति विकृति शून्य है। उपर्युक्त 25 तत्वों को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए ईश्वर कृष्ण को प्रमाण निरूपण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि स्वयं ईश्वर कृष्ण का वक्तव्य है कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणद्धि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणों के द्वारा सांख्य तत्वों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष की सत्यता सर्वमान्य होने से त्रिविध प्रमाणों में प्रत्यक्ष का स्थान प्रथम है। वे पदार्थ जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता उनके लिए प्रत्यक्ष मूलक अनुमान की प्रवृत्ति होती है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अगम्य पदार्थ आगम विद्या सिद्ध किए जाते हैं। अतः प्रमेय की सिद्धि के लिए त्रिविध प्रमाणों की अनिवार्य स्वीकृति अपेक्षित है। प्रमाण सिद्ध पंचविंशति तत्वों का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण ने जगत चतुर्विंशति तत्व में व्याप्त सुख दुख मोह प्रकाश प्रवृत्ति निवृत्ति लघुता गुरुता जड़ता के त्रिवृत्तीकरण के आधार पर जगत के मूल कारण प्रकृति में सत्व रजस तमस त्रिगुण की सत्ता सिद्ध की है। प्रकृति गुणों से भिन्न नहीं अपितु तदात्मक है, अर्थात गुण से पृथक प्रकृति नहीं और प्रकृति से पृथक गुण नहीं है। त्रिगुण प्रकृति की दो अवस्थाएं हैं, साम्यावस्था तथा वैषम्यावस्था। गुणों की साम्यावस्था प्रलय तथा उनकी वैषम्यावस्था संसार है। जिज्ञासा होती है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तत्वों के आविर्भाव का सत्कार्यवाद के अनुसार क्या क्रम है। उत्तर है वैषम्यावस्थापक प्रकृति से महत सत्कार्यवाद के अनुसार क्या क्रम है। उत्तरोत्तर है वैषम्यावस्थापक प्रकृति से महत महत से अहंकार अहंकार से एकादश इंद्री और पंच तन्मात्र तथा पंच तन्मात्र से पंच महाभूत क्रमशः आविर्भूत होते हैं। महाभूत से आविर्भूत गो घटादि तत्वांतर रूप न होने के कारण महाभूत में ही अंतर्भुक्त हैं। प्रतिसर्ग प्रलय का क्रम सर्ग क्रम के विपरीत है। तत्त्व कार्य का अपने अपने कारण में लय होते हुए मूल कारण प्रकृति में चरम लय होता है। सांख्य के अनुसार पदार्थों का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है। उत्पत्ति और नाश नहीं, क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं और सत का नाश नहीं होता है। उपरि निर्दिष्ट तात्विक सृष्टि के 13 तत्वों बुद्धि अहंकार मन पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा पंच कर्मेन्द्रिय को सांख्य में करण संज्ञा से व्यवहृत किया गया है। 13 करण बाह्य और आभ्यंतर द्वार और द्वारी रूप में विभाजित है। आभ्यंतर कारण बुद्धि अहंकार तथा मन के अतिरिक्त 10 करण इंद्रियों बाह्य है। द्वारी भूत बुद्धि के अतिरिक्त द्वादश करण द्वार स्वरूप हैं। मन की दृष्टि से अहंकार और इंद्रिय की दृष्टि से मन को विषय अर्पित किए जाने के कारण अहंकार और मन भी द्वारीभूत कहे जा सकते हैं, लेकिन सांख्य कारिका में मुख्य द्वारीभूत बुद्धि की दृष्टि से अन्य कारणों को द्वार पक्ष में रखा गया है। ज्ञान तथा भोग का साधन होने से ये करण कहे जाते हैं। अंतःकरण बुद्धि अहंकार तथा मन की सामान्य और असामान्य दो वृत्तियाँ हैं। पंच प्राणादि प्राण अपान व्यान उदान तथा समान अंतःकरण की सामान्य वृत्तियां हैं तथा अध्यवसाय अभिमान तथा संकल्प असामान्य वृत्तियां क्रमशः विषय ग्रहण के प्रति करणों का अग्रसरित होना दो प्रकार से होता है। प्रथम खले कपोतन न्याय से एक बाह्येन्द्रिय तथा अंतःकरण त्रय की युगपत अक्रम प्रवृत्ति होकर विषय का ज्ञान होता है। जैसे घटा टोप अंधकार में प्रकाश की किरण चमकते ही सामने सिंह दर्शन से प्रत्यक्ष वृत्ति के तुरंत बाद संकल्प अभिमान और निश्चय वृत्तियों तुरंत होती हैं। फलस्वरूप व्यक्ति 3, 2, 5 ही प्रमाणों की रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा करता है। द्वितीय करण चतुष्टय की क्रमशः अर्थात ऊहापोह के साथ रुक रुक कर वृत्तियाँ होती हैं, जैसे अंधकार में दिखाई दिए व्यक्ति के विषय में इसके हाथ में शस्त्र है। अतः यह चोर है, ऐसा संकल्प कर यह मेरी ओर आ रहा है, यह अभिमान करके तथा मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा अध्यवसाय कर व्यक्ति दौड़ पड़ता है। प्रत्यक्ष विषयों की भांति अप्रत्यक्ष विषयों में भी वाहेंद्रियों को छोड़कर अंतःकरण त्रय की युगपत एवं अयुगपत वृत्तियाँ होती हैं। इन कारणों में एक भेद यह है कि बाह्यकरण वर्तमान मात्र को विषय करते हैं और आभ्यंतर करण अतीत अनागत और वर्तमान तीनों को विषय करते हैं। पीछे बुद्धि से महाभूत पर्यंत जो सृष्टि चर्चित हुई है उसके आधार पर दो प्रकार के सर्गों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण ने प्रत्येक के बिना दूसरे का स्वरूप असंभव रहने से दोनों सृष्टियों को उपयोगी सिद्ध किया है। इस प्रकार दो सर्गों से युक्त सृष्टि एक दूसरे का आश्रय लेकर प्रवृत्ति होती है। ये दो सर्ग भौतिक सर्ग तथा प्रत्यय सर्ग हैं। भौतिक सर्ग का अपर पर्याय तन्मात्र सर्ग तथा प्रत्यय सर्ग का दूसरा नाम बुद्धि सर्ग है। भौतिक सर्ग के तीन मौलिक भेद हैं, देवयोनि, तिर्यग्योनि तथा मनुष्य योनि। देव योनि के आठ प्रकार हैं, ब्रह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस तथा पिशाच। तिर्योग्नि के पांच प्रकार पशु, मृग, पक्षी, शरीर, सृप तथा स्थावर हैं, तथा मनुष्यिनि एक ही प्रकार की है। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि तथा सिद्धि भेद से चतुर्विध, गुण वैषम्य से 50 तथा अवांतर भेदों से प्रत्यय सर्ग अनेकधा हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन से दो प्रकार के शरीरों का प्रसंग प्राप्त है, एक है स्थूल शरीर तथा दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की अवस्थिति के लिए स्थूल शरीर की अनिवार्यता, चित्र की स्थिति के लिए भित्ति की अनिवार्य उपस्थिति के उदाहरण से स्पष्ट है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से आवृत होने पर ही पुरुष जीवात्मा का भोगायतन बन पाता है। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भोग शून्य है। मातृपितृ षटकोष स्थूल शरीर के घटक हैं तथा सूक्ष्म शरीर अष्टदस अवयवात्मक हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां तथा पंच तन्मात्राएं ये सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। महाप्रलय में प्रधान में लय को प्राप्त होने तथा प्रधान का कार्य होने से सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। धर्माधर्मादि आठ भावों से युक्त अप्रतिहत गतिशील स्वतंत्र भोग रहित सूक्ष्म शरीर सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत प्रत्येक पुरुष के लिए पृथक पृथक उत्पन्न होता है और रंगस्थली में नट के अनेक विध रूप धारण की भांति पुरुष स्थूल शरीर ग्रहण करके देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष इत्यादि अनेक रूपों को धारण कर लोक परलोक में आवागमन करता है। इस प्रकार स्थूल देह के यही नष्ट हो जाने तथा शुद्ध आत्मा के व्यापक तथा निष्क्रिय होने से उसका परलोक गमन असंभव होने से परलोक गमन आदि की उपपत्ति के लिए सूक्ष्म शरीर को आवश्यक माना गया है। वेदांत का सूक्ष्म शरीर सांख्य के सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। वेदांतीय सूक्ष्म शरीर सप्तदश तत्वात्मक बुद्धि, अहंकार, दश इंद्रियां तथा पंच प्राणात्मक है। वेदांत में मन को सूक्ष्म शरीर तथा अंग स्वीकृत नहीं किया गया है तथा पंच तन मात्राओं के स्थान पर पंच प्राणों को माना गया है। सूक्ष्म शरीर के आठ भावों से आठ प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, धर्म से ऊर्ध्वगमन, अधर्म से अधोगमन, ज्ञान से अपवर्ग, अज्ञान से बंध, वैराग्य से प्रकृति लय, अवैराग्य, राग से संसार, ऐश्वर्य से इच्छा पूर्ति तथा अनैश्वर्य से इच्छा विधात होता है। सांख्य का उद्देश्य है सूक्ष्म शरीर को ज्ञान धर्म के द्वारा अपवर्ग कैवल्य प्राप्त कराना। कैवल्य के संबंध में सांख्य दर्शन की मान्यता इस प्रकार है, पुरुष या आत्मा का बंध और मोक्ष व्यावहारिक है तथा प्रकृति का बंध और मोक्ष वास्तविक है। प्रकृति ही बद्ध होती है और प्रकृति ही मुक्त होती है, अर्थात प्रकृति स्वयं ही सात रूपों धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य से अपने को कर्माशयात्मक बंधन से बांधती है और वही प्रकृति तत्व ज्ञानात्मक एक धर्म अर्थात विवेक ख्याति से अपना बंध विश्लेष करती है। त्रिविध दुख बंधन स्वरूप है, उनसे छुटकारा प्राप्त करना मोक्ष है। पुरुष के व्यावहारिक बंधन का शिथिलीकरण प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान जिसे विवेक ख्याति कहते हैं से होता है, अर्थात मैं जड़ प्रकृति एवं उसके कार्य संसार से भिन्न चेतन हूँ। इस प्रकार की अविलुप्त असंदिग्ध विवेक ख्याति से पुरुष को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मुक्त देह धारण करते हुए भी सांसारिक सुख दुख से असंपृक्त रहता है और देह धारण के हेतुभूत प्रारब्ध कर्म का भोग द्वारा नाश होते ही देह त्याग द्वारा जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है। यही विदेह मुक्ति है। इस प्रकार दुखों की आत्यंतिकी निवृत्ति से पुरुष का केवल होना कैवल्य केवलस्य भावः कैवल्यम अथवा अपवर्ग अपवृज्यते इति अपवर्गः है। उपर्युक्त विवेचन से सांख्य के मतभेद रहित मौलिक सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। अब सांख्य के मतभेदीय प्रकरणों को जिनका संकेत प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है लिया जाए। करणों के व्यापार तथा भावों के मतभेद को प्रस्तुत ग्रंथ के 83 तथा 104 पृष्ठ में इंगित किया गया है। सांख्य कारिका 32 में 13 करणों के 3 व्यापार बतलाए गए हैं। आहरण धारण तथा प्रकाश। सांख्य कारिका के व्याख्याकार करणों के त्रिविध रूपों के विषय में एक मत है, किंतु किस करण का कौन सा व्यापार है के विषय में मतभेद है। युक्ति दीपिकाकार ने आहरण कार्य कर्मेंद्रियों, क्योंकि विषयों के अर्जन या प्राप्ति का सामर्थ्य उन्हीं में होता है का माना है। धारण काय ज्ञानेंद्रियों, क्योंकि विषयों की प्राप्ति होने पर उनका धारण करने का सामर्थ्य उन्हीं में होता है का स्वीकार किया है तथा विषयों का प्रकाशन कार्य मन अहंकार तथा बुद्धि का अंगीकार किया है। मार्टर वृत्तिकार के मत में इंद्रिय मात्र ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तथा मन का कार्य आहरण अभिमान का कार्य धारण तथा बुद्धि का कार्य प्रकाशन है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार कर्मेंद्रियों का अपने अपने विषय को ग्रहण करना व्यापार है। मन अहंकार बुद्धि इन तीनों का प्राणादि वायुओं के द्वारा शरीर को धारण करना व्यापार है तथा ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विषय को प्रकाशित करना व्यापार है। वाचस्पति मिश्र का एतद्विविषयक मत जय मंगलाकार से मिलता है। गौड़पाद भाष्य में पूर्वोक्त सभी से भिन्न मत इन शब्दों में वर्णित है। कर्मेंद्रियां आहरण और धारण करती हैं तथा बुद्धिन्द्रियों प्रकाश करती हैं। स्पष्ट है कि इस मत में त्रिविध अंतःकरण का कोई कार्य ही नहीं बतलाया है, जबकि ईश्वर कृष्ण ने 3 व्यापार त्रयोदश करणों के बतलाए हैं। अतः गौड़पाद भाष्यकार का मत सांख्य कारिका के विरुद्ध होने से शिथिल प्रतीत होता है। सांख्य कारिका 43 में वर्णित भाव प्रकरण के आधार पर मार्ठर वृत्तिकार तथा गौड़पाद भाष्यकार ने भावों की संख्या 3 बतलाई है। सांसिद्धिक प्राकृतिक तथा वैकृत। चंद्रिकाकार नारायण तीर्थ तथा कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र के मत में भाव 2 प्रकार के हैं, सांसिद्धिक तथा वैकृत। इनके मत में कारिका में प्रयुक्त प्राकृतिक पद सांसिद्धिक भाव के अर्थ को स्पष्ट करता हुआ उसकी व्याख्या रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार प्राकृतिक और अप्राकृतिक अर्थात स्वाभाविक और नैमित्तिक रूप से सांसिद्धिक तथा वैकृत 2 प्रकार के भाव हैं। इसके विपरीत मत के अनुसार कारिका में प्रयुक्त प्राकृतिक पद सांसिद्धिक के रूप स्पष्टीकरण रूप में नहीं अपितु अपने एक स्वतंत्र भेद के रूप में आया है। ऐसा मानकर गौड़पाद भाष्यकार ने तीन प्रकार के भावों की विचारधारा प्रस्तुत की है, किंतु गौड़पाद कृत व्याख्या के अनुसार सांसिद्धिक तथा प्राकृतिक का भेद अत्यंत स्फुट नहीं हो पाया, अतः दो भावों का मान्यता ही युक्त युक्त प्रतीत होती है। ईश्वर को लेकर आपाततः यही विदित होता है कि सांख्य के उद्भावक महर्षि कपिल निरीश्वरवादी थे, इसमें उनका ईश्वरा सिद्धे सूत्र प्रमाण है, लेकिन सांख्य के प्रतिपाद्य विषय तथा ईश्वरा सिद्धे सूत्र का सप्रसंग अध्ययन किया जाए तो निरीश्वर सांख्य की धारणा खंडित होती है, सेश्वर सांख्य सिद्ध हो जाता है। सांख्य के आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में सांख्य सेश्वर है, जगत के उपादान कारण के रूप में प्रकृति की मान्यता को स्थापित करने वाले सांख्य का मुख्य उद्देश्य प्रकृति एवं उसके कार्यों का मुख्यतया प्रतिपादन करना है, अतः ईश्वर के विषय में सांख्य अधिक नहीं कह पाया है। जीवात्मा पुरुष की चर्चा प्रकृति के प्रयोजन उसे मुक्त करना के रूप में की गई है, किंतु सांख्य के पंचविश तत्व पुरुष का अर्थ केवल जीवात्मा अर्थात बद्ध पुरुष नहीं अपितु सर्वथा मुक्त परमात्मा या ईश्वर भी है। बद्ध पुरुष अनंत है और सर्वथा मुक्त पुरुष एक है। कह सकते हैं कि चेतन तत्व की दृष्टि से ये सब पुरुष एक होने के कारण सांख्य के 25 तत्वों की मान्यता भी सुरक्षित रह जाती है। ईश्वरा सिद्धेह सूत्र द्वारा कपिल ने ईश्वर का खंडन नहीं किया है, यह तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की शंका उपस्थित करने वाले नास्तिक का पूर्व पक्ष है। उत्तर पक्ष में सूत्रकार कहते हैं उभयथाप्यसत्कारत्वम्, अर्थात ईश्वर का नित्य ज्ञानात्मक प्रत्यक्ष होने के कारण उसे अनित्य सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर का प्रत्यक्ष लक्षण का लक्ष्य नहीं है, अतः अव्याप्ति की शंका ही नहीं होती। इस प्रकार से ईश्वर सांख्य सिद्ध होता है। विमला कर्नाटक।